بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آل عمران کی 60ویں سے لے کر 63ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگیے محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے پیغمبر، ستیہ وہی ہے جو آپ کے پالنہار کی اور سے ہے، اتہ سندیہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ تو ہے پیغمبر، جو کوئی بھی ایشوریہ سندیش وحی دوارا آپ کے پاس آنے والے گیان کے پشچات آپ سے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بحث اور وواد کرے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے پتروں کو لائیں اور تم اپنے پتروں کو، ہم اپنی استریوں کو لائیں اور تم اپنی استریوں کو لاؤ، ہم اپنے آتمیے لوگوں کو اور تم اپنے آتمیے لوگوں کو لاؤ، تو پھر ہم ایشور کے سمکش پرارتھنا کریں اور ایک دوسرے کو ابھیشاپ دیں، تتھا جھوٹ بولنے والوں کے لیے ایشوریہ لعنت ارتھات ابھیشاپ نردھارت کریں۔ निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बुधवार है, जुलाई और जिलहिज की 6 तथा तीर माह की 15 तारीख। कार्यक्रम में आप पहले विश्व समाचार सुनेंगे, फिर उसके बाद राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम पेश किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत साप्ताहिक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शौर्य गाथा, और हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। दोस्तों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर देख सकते हैं। पता है parstoday.com/hi। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुख्य समाचारों का सारांश। प्रतिबंध हटाने वाले परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के लिए वाशिंगटन ने हामी भरी है। बोरिस जॉनसन के 2 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि रूस से गैस की सप्लाई कभी भी रुक सकती है। अर्दोगान और बाइडेन के बीच हथियारों की डील से अमरीकी सेनेटर ने नाराजगी जताई है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
वाशिंगटन ने कहा है कि पाबंदियां हटाने वाले परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के लिए तैयार है। ईरान के मामले में अमरीका के विशेष दूत ने कहा है कि अमरीका ईरान से पाबंदियां हटाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर के लिए तैयार है, लेकिन उसे इंतजार है कि ईरान इसके लिए तैयार हो। वहीं ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि समझौते पर हस्ताक्षर अमरीका के संजीदा इरादे पर निर्भर हैं। रॉबर्ट माली ने कहा कि अमरीका ने प्रस्ताव रखे हैं जिन पर ईरान को जवाब देना है। उन्होंने कहा कि यूरेनियम संवर्धन के मैदान में ईरान ने चिंताजनक रूप से प्रगति कर ली है। मेज पर एक टाइम टेबल रखा गया है जिसके अनुसार ईरान को धीरे धीरे परमाणु समझौते के पूर्ण पालन की स्थिति में लौटना है, और साथ ही साथ अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाता जाएगा। अमरीकी अधिकारी ने दावा किया कि ईरान को फैसला करना है कि वो परमाणु समझौते के पूर्ण पालन की ओर लौटना चाहता है या नहीं। ईरान के अधिकारी ने इस बारे में अल जजीरा टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि ईरान मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर के लिए तैयार है, मगर ये अमेरिका के संजीदा इरादे पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि दोहा वार्ता में हमें अमेरिका के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आया। ईरान के अधिकारी ने कहा कि ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि हम परमाणु समझौते पर पूर्ण रूप से अमल करना चाहते हैं, लेकिन पाबंदियां हटाए जाने की ठोस गारंटी की हमें प्रतीक्षा है।
ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार खतरे में है। दो मंत्रियों के इस्तीफे के बाद हालात को संभालने की कोशिश तेज कर दी गई। ब्रिटेनी सरकार के चांसलर ऋषि सोनिक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने त्यागपत्र देने का ऐलान कर दिया और कहा कि देश के संचालन के सिलसिले में उन्हें बोरिस जॉनसन के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। चांसलर ऋषि सोनिक का कहना है कि जनता चाहती थी कि सरकार को बेहतरीन अंदाज में चलाया जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रहित में काम नहीं कर रही है। ये इस्तीफे प्रधानमंत्री की ओर से एमपी क्रिस पंचर को एक सरकारी ओहदे पर रखने पर माफी मांगने के कुछ ही मिनट बाद दिए गए। जॉनसन ने माना कि जारी साल के शुरू में पंचर को डिप्टी चीफ व्हिप के पद पर रखना एक बड़ी गलती थी और उन्हें ये फैसला लेने से पहले एमपी पंचर रवैये के बारे में अतीत में लगाए गए आरोपों के बारे में आगाह किया गया था। जॉनसन ने कहा कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो ये गलत फैसला था। मैं उन सारे लोगों से माफ़ी मांगता हूं जो इस फैसले से प्रभावित हुए। इस विवाद को लेकर बोरिस जॉनसन की प्रतिक्रिया पर विपक्षी दलों और खुद उनकी पार्टी के सांसदों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है।
रूस का कहना है कि ब्रिटेन ने रूस का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, जबकि वो खुद ही आंतरिक राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि वो देश जो अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान में अक्षम दिखाई दे रहा है, उसने मॉस्को के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है। ज़ाखारोवा ने कहा कि लंदन को पहले अपनी परेशानियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी अंदरूनी समस्याओं के समाधान में अक्षम दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन रूस के विरुद्ध बेपनाह पैसा खर्च करते हुए अपनी सारी शक्ति झोंक चुका है, जबकि उससे अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान हो ही नहीं पा रहा है। याद रहे कि बोरिस जॉनसन की सरकार को पिछले कुछ महीनों से कई प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ रहा है। इसी बीच उनकी सरकार के दो मंत्रियों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिए हैं।
यूक्रेन युद्ध से जहां इस देश में तबाही नहीं मची बल्कि पूरी दुनिया तक के संकट की आंच पहुंच रही है, वहीं ब्रिटेन ऐसा लगता है कि ठान कर बैठा है कि इस युद्ध की शिद्दत में कमी नहीं होने देना है। अन्य पश्चिमी देशों की तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी जिनका देश इस समय गंभीर राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, यूक्रेन युद्ध की आग भड़का रहे हैं। अल जजीरा टीवी चैनल से बातचीत में जॉनसन ने दावा किया जिन इलाकों को रूस की सेना ने हालिया समय में अपने नियंत्रण में लिया है, यूक्रेन की सेना उन्हें दोबारा आज़ाद कराने में सक्षम है। जॉनसन ने दावा किया कि ब्रिटेन की सरकार यूक्रेन की सामरिक सहायता के अपने वादे पर कायम है और इस देश के पुनर्निर्माण में भी भूमिका निभाएंगे। इस बीच यूक्रेन के सूत्रों ने बताया कि स्लावियांस्क शहर पर रूसी सेना ने हमला किया जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और 7 लोग घायल हुए।
यूरोपीय संघ की प्रमुख ने सचेत किया है कि रूस की गैस सप्लाई कभी भी रुक सकती है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय संसद में बुधवार को कहा, यूरोप के लिए रूस की ओर से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किसी भी समय रुक सकती है। उन्होंने कहा कि रूस से पूरी तरह से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रुकने की स्थिति में यूरोपीय संघ को एक आपातकालीन योजना की जरूरत होगी। उनका कहना था कि हमको रूस की ओर से झटका लगने के लिए तैयार रहना चाहिए। उर्सुला वॉन के अनुसार गैस की आपूर्ति रुकने की तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए, क्योंकि ये आपूर्ति कभी भी पूरी तरह से बंद हो सकती है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन पर रूस के हमले पर अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मॉस्को के विरुद्ध व्यापक स्तर पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि प्रतिबंध लगाने वालों का ये मानना था कि इन प्रतिबंधों से रूस की कमर टूट जाएगी और वो उनके सामने झुक जाएगा, लेकिन व्यावहारिक रूप में उसके उलट हो रहा है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगवाने वालों को अब कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए रूस की ओर से तेल की सप्लाई का रोका जाना उसी का एक हिस्सा है।
अर्दोगन के साथ जो बाइडन के बीच होने वाली हथियारों की डील से अमेरिका के भीतर भी नाराजगी पाई जाती है। स्पेन में नेटो के शिखर बैठक से इतर अमेरिका और तुर्की राष्ट्रपतियों की भेंट पर अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने कड़ी आपत्ति जताई है। गस बिलराकिस ने कहा है कि जो बाइडन द्वारा रजब तैयब अर्दोगन के साथ भेंट को लेकर मैं बहुत आहत हूं। उन्होंने कहा कि नेटो की बैठक से इतर अमेरिका और तुर्की के राष्ट्रपतियों के बीच होने वाले हथियारों के समझौते को रोका जाए। इस अमेरिकी सांसद का कहना है कि हथियारों के इस समझौते को रोकने के लिए मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। गस विलिराकिस ने बताया कि तुर्की ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कांग्रेस के सदस्यों को भारी रकम दे रहा है। उन्होंने कहा कि बाइडन की सरकार में तुर्की का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मैड्रिड में आयोजित नेटो की शिखर बैठक में तुर्की को F-16 युद्धक विमान भेजने पर सहमति जताई थी। तुर्की की सरकार ने सितंबर में अमेरिका से कहा था कि अपने हवाई बेड़े को अपडेट करने के लिए वो वाशिंगटन से 40 F-16 युद्धक विमान खरीदना चाहता है। इससे पहले तक अमेरिका के इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।
अमेरिका में फिर गोलीबारी की घटना हुई है। शिकागो में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली गोलीबारी के बाद अमेरिका में फिर गोलीबारी की नई घटना घटी है। अमेरिका के गैरी में होने वाली गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि आक्रमणकारियों ने 10 लोगों को गोली मारी। गोलीबारी की यह घटना ब्लॉक पार्टी में हुई। गैरी की पुलिस के अनुसार उन्हें स्थानीय समय के अनुसार 12:45 पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिस को वहां पर 3 लोग मरे हुए मिले, जबकि 7 अन्य घायल स्थिति में थे। पुलिस ने बताया है कि घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। आक्रमणकारी को ढूंढने में पुलिस लग गई है। इससे पहले गौरी में 13 जून को एक नाइट क्लब में भी फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। इस गोलीबारी के दौरान 4 लोगों के घायल होने की भी बात कही गई थी।
अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तबून ने मंगलवार की शाम फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास और हमास के पुलिस ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हनिया की मुलाकात करवाई। अल्जीरिया के सरकारी टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार ये मुलाकात राजधानी अल्जीयर्स में हुई, जहां फ्रांस से अल्जीरिया की आज़ादी के 60 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। महमूद अब्बास और इस्माइल हानिया के अलावा जियाद उमर, माजिद फराज, मोहम्मद हब्बाश और सामी अबू जोहरीज जैसे नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। टीवी चैनल ने दिखाया कि अब्बास, हनिया और अन्य फिलिस्तीनी नेता एक साथ बैठे हुए हैं और उनके बीच में राष्ट्रपति तबून नजर आ रहे हैं। टीवी चैनल ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया, लेकिन यह ब्यौरा नहीं दिया कि इसमें क्या बातचीत हुई। फिलिस्तीन में 2007 से विभाजन की स्थिति देखने में आ रही है और हमास और फतेह के बीच गहरे मतभेद मौजूद हैं।
तालिबान ने भारत सरकार से मांग की है कि वो अफगानिस्तान के छात्रों को वापस बुलवाए। यरना की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के नेताओं ने भारत सरकार से ये अनुरोध किया है कि अफगानिस्तान के वे छात्र जो भारत में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनको वो वापस बुलवाए। तालिबान की ओर से ये मांग अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ सोमवार को अफगानिस्तान के छात्र छात्रों की भेंट के बाद की गई है। इन छात्रों ने मुत्तकी से भारत वापस जाकर अपनी पढ़ाई फिर से आरंभ करने की मांग की है। याद रहे कि पिछले साल अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, उसके बाद विश्व के बहुत से देशों ने अफगानिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए थे। भारत भी उन देशों में शामिल था। उस समय से बहुत से अफगानी छात्रों की पढ़ाई अधर में पड़ी हुई है।
जंगों और आतंकवाद से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार शीजे वर्ल्डमैन ने मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमानों पर असाधारण खतरा मंडरा रहा है और वहां वही हालात पैदा हो सकते हैं जो रवांडा में देखे गए हैं। लेखक ने लिखा है कि जेनोसाइड वॉच संस्था के संस्थापक जॉर्ज स्टांटन ने भारत में मुसलमानों के नस्ली सफाई की आशंका जताई है और ये आशंका उन्होंने कुछ ठोस बुनियादों पर जताई है। इससे पहले वो रवांडा में होने वाले खौफनाक नरसंहार की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। पत्रकार ने लिखा है कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ठीक उसी शैली पर काम कर रही है जिस शैली पर रवांडा में 1990 के दशक में आरंभ में काम हुआ था। वहां होटो कबीले से संबंध रखने वाले राष्ट्रपति का विमान गिराया गया, जिसके बाद टुर्सी कबीले का भयानक रूप से नस्ली सफाया किया गया। और इसके साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं प्रतिरोध की बढ़ती ताकत और कमजोर होता इसराइल, लेबनान में कभी खत्म न होने वाली तलाश और यूक्रेन जंग। तो सबसे पहले प्रतिरोध की बढ़ती ताकत का विषय। हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीनी गुटों की दिन प्रतिदिन की ताकत बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी ओर इसराइल अंदर से पूरी तरह कमजोर होता नजर आ रहा है। क्या कमजोर ज़ायोनी शासन प्रतिरोध के मोर्चे की शक्ति का मुकाबला कर सकता है? विचार सुनिए नई दिल्ली से टीकाकार शाहिद प्रधान के।
मुकाबला इस तरह से बड़ी हुई है और ये 70 साल से जो चीजें 70-75 साल से चीजें चल रही है और बहुत सारे ऐसे लीडर्स उनके वहाँ पे आए हैं कि जिन्होंने खुद कोशिश की कि ये मुकावमत खत्म हो, लेकिन ये मुकावमत खत्म नहीं हुई। जब हमने जो फिलहाल जो देखा कि अगर लीडरशिप भी इन्वॉल्व नहीं है तो अफराद और इंडिविजुअल्स भी इस चीज को, ये मुकावमत को लेकर आगे चल रहे हैं। पहले ये होता था कि सिस्टम निज़ाम तंजीम की मोहताज होती थी ये मुकावमत, अब ये जो अब जो ये आया है कि ये अब तो ये तंजीम के भी मोहताज नहीं रही है। अब हर फर्द जो है वो एक तंजीम के मानंद है और वो खड़ा हो रहा है और अपनी बात को कह रहा है और मुकावमत कर रहा है। तो जब कोई मुसम्मम, एक कौम इतनी मुसम्मम हो जाए और इतना उनका इरादा इतना मजबूत हो और इतना महकम हो, तो किसी के लिए भी, किसी भी मतलब कि सारी चीजों के लिए ये इस मुकावमत के सामने खड़ा होना पॉसिबल नहीं। और ये हम तो देख रहे हैं कि ये अभी जो रेत का ढेर है आस्ते आस्ते गिरते जा रही है, बातें बहुत हो रही है लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे। और जितना ये कोशिश कर रहे हैं, जितना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेके नेथन्याहू जो बहुत मजबूत और अच्छा मतलब कि कुछ उनके लोग उसको प्रॉफिट ही कहते हैं कि भाई खुदा खुदा ने ये भेजा है इसराइल को सेफ करने के लिए, और ये वो इसी की हुकूमत के अंदर बदतरीन शिकस्त उनको जो मिली है वो ये आखिरी 10-12-15 सालों के अंदर जो हम देख रहे हैं। तो 2000 से उनका जो सिलसिला शुरू हुआ है हिज़्बुल्लाह के जहाँ से उन जो पीछे आए हैं, ये सिलसिला शुरू हुआ और ये इंशाल्लाह ये सिलसिला और बढ़ता जाएगा। हमने अब तक नहीं देखा कि आखिरी 20 साल के अंदर ये फिलिस्तीनियों ने कभी हार मानी हो और ना मतलब के जो मुकावमत कैसे करते हैं। अब जब भी ये सीज फायर का ग्राफ उठा के देख ले तो यही मिलता है कि ये जो हुकूमतें हैं, ये कमजोर से हुकूमतें हैं, यही लोग हर वक्त पीछे आए। और जिस तरह से हमें सिस्टम दिख रहा है कि अगर ज्यादा प्रेडिक्ट करना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लोग कहना है कि नेतन्याहू दोबारा आएगा इलेक्शन जीत के, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इसकी थी और ये जो है करप्शन के केस होने का भी, क्योंकि बस उनके पास में कोई सही चॉइस नहीं बचती है उनके पास में, तो चांसेस ये बचता है कि शायद नेतन्याहू दोबारा आए। और जिस तरह से ये नफरत की सियासत और ये सारी चीजों को बढ़ाया जा रहा है, एक फजा है दुनिया में, हिंदुस्तान में देखे हम, इसराइल में देखे, तो वो एक राइट विंग सियासत का एक हवा चल रही है, तो उस हिसाब से लगता है आएगा। लेकिन हमें जितना ये पता है कि जितनी ये शदीद लोग जो हुकूमतें बनेगी, जितनी ये राइट विंगर्स होंगे, उतनी ही मुकामत मजबूत होती जाएगी।
इसराइल वर्ष 1982 में जब लेबनान में गृह युद्ध अपने चरम पर था, तब उसने इस देश पर हमला किया और इस देश के दक्षिणी भाग को कब्जे में ले लिया। बैरूत से IRIB के लिए हसन अजीम जादे की रिपोर्ट, साथी रविश जैदी की जबानी।
अवैध ज़ायोनी शासन वर्ष 1982 में जब लेबनान में गृह युद्ध अपने चरम पर था, तब उसने इस देश पर हमला कर दिया था। इसराइल ने दक्षिण लेबनान के आधे क्षेत्र को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। इस बीच ईरान के चार राजनयिकों ने स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से सीरिया के रास्ते से लेबनान में प्रवेश किया। लेबनान के एक वरिष्ठ टीकाकार का कहना है कि उस समय जब लेबनान के ज्यादातर इलाके ज़ायोनी शासन के नियंत्रण में आ गए थे, साथ ही बैरूत की भी घेरा बंदी हो चुकी थी, तब सैयद मोहसिन मूसवी ईरानी दूतावास के कार्यवाहक राजदूत के तौर पर अपने साथ एक अन्य सैन्य अधिकारी, एक पत्रकार और अपने ड्राइवर के साथ लेबनानी पुलिस के संरक्षण में त्रिपोली से बैरूत की ओर चले। लेकिन जब वो लोग बर्रे नामक चेक पोस्ट पर पहुंचे, तभी इसराइल के समर्थक एक लेबनानी सशस्त्र गुट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। असल कहानी तो चार ईरानी कूटनायक की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। सबसे पहले अवैध ज़ायोनी शासन के समर्थक सशस्त्र लेबनानी गुट के प्रमुख समी जाजा ने ईरानी राजनयिकों के शहीद होने की सूचना दी। ईरान के एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि किसी भी तरह से न तार्किक और न ही अक्ल इस बात को सही ठहरा रही थी, क्योंकि पूरी तरह से ये साफ था कि ये लोग राजनयिक हैं, क्योंकि पुलिस स्क्वाड के साथ वे लोग बैरूत की ओर जा रहे थे और अगर गिरफ्तार किया था तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों उन्हें पहले ही दिन शहीद किए जाने का दावा किया गया। लेकिन दूसरी कहानी जो सामने आई, उसके कई गवाह और दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके अनुसार ईरानी राजनयिकों को गिरफ्तार करने के बाद इसराइली अधिकारियों को सौंपा गया था, जिन्हें अवैध अधिकृत फिलिस्तीन ले जाया गया था। लेबनान के एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि ज्यादातर दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि इसराइल ने चार ईरानी कूटनायकों को अपने हवाले लिया था, जिन्हें अवैध अधिकृत फिलिस्तीन ले जाया गया था। उन दिनों लेबनान का एक बड़ा हिस्सा अवैध ज़ायोनी शासन के कब्जे में था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ऐसी स्थिति में कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए इसराइल ही जिम्मेदार था। एक अन्य लेबनान के पूर्व अधिकारी का कहना है कि मैंने अपहरण होने वाले ईरानी राजनयिकों के परिवार वालों से मुलाकात की है। चारों ईरानी कूटनायकों के परिवार वालों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे सब बहुत परेशान थे। हालांकि वे सब धैर्य वाले थे और मजबूती के साथ अपने देश के साथ खड़े थे, लेकिन इसके बावजूद उन चारों के परिवार वालों और खुद ईरानी जनता चाहती थी कि उनके चारों राजनयिक अपने वतन वापस लौटें। अवैध ज़ायोनी शासन ने अभी तक इन चार राजनयिकों के अपहरण होने के बारे में न कोई जानकारी दी है और न ही संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों के साथ इस संबंध में कोई सहयोग किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय और बैरूत में स्थित ईरानी दूतावास हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम पत्र लिखकर चारों ईरानी राजनयिकों की खोज करने और उनकी स्थिति को स्पष्ट करने की मांग करता आया है। बैरूत से IRIB के लिए हसन अजीमजादे की रिपोर्ट।
और अब चलते हैं यूक्रेन।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
यूक्रेन जंग में जहां कुछ देश घी का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ देश शांति का प्रयास भी कर रहे हैं। एक समीक्षात्मक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास।
जहां एक तरफ पश्चिमी मीडिया यूक्रेन जंग में रूसी सैनिकों के विध्वंसक हमलों और बर्बरता की बातें कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक जर्मन पत्रकार ने अलग तरह की जानकारियां प्रकाश में लाई है। एलिना लिप एक जर्मन पत्रकार हैं जो लंबे समय से यूक्रेन के दोनबास इलाके से रिपोर्टिंग कर रही हैं। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के दोनबास इलाके में यूक्रेन के सैनिकों की बर्बरता की रिपोर्ट तैयार की, जिसके चलते जर्मनी में उन पर अनेक आरोप लगाए गए और जेल की सजा उनके सामने है। एलिना बताती हैं कि मैंने 24 फरवरी को अपने टेलीग्राम चैनल पर रिपोर्ट शेयर की, जिससे साबित होता है कि यूक्रेन दोनबास के इलाके में 8 साल से आम नागरिकों की हत्याएं कर रहा है। मैंने लिखा कि ये नस्ली सफाया है और दोनबास के स्थानीय लोग रूसी सेना के विशेष ऑपरेशन का समर्थन कर रहे हैं। जर्मनी में इसे अपराध माना जाता है और इस पे सजा है। ये खबर सामने आने के 5 दिन बाद जर्मनी के सरकारी टीवी चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाई कि रूसी सेना ने दोनबास के इलाके पर बमबारी की है, मगर पता चला कि ये बमबारी यूक्रेन की सेना ने की थी। नतीजे में सरकारी टीवी चैनल को एक दिन बाद माफी मांगनी पड़ी। ये पता नहीं कि उस रिपोर्ट को और उस पर मांगी जाने वाली माफी को कितने लोगों ने देखा है। एलिना का कहना है कि अधिकारी मुझे 3 साल जेल में डालना चाहते हैं। ये अकल्पनीय है। उन्हें इसलिए बुरा लगा है कि मैंने अपनी जानकारियां दूसरों को भी शेयर की। इसका मतलब यह है कि जर्मनी में अभिव्यक्ति की कोई आजादी मौजूद नहीं है।
This is Luis Sevilla.
एक अन्य पत्रकार लुइस सिविया हैं जो रूसी स्पेनिश नागरिकता रखती हैं। उन्होंने यूक्रेन की सेना की हरकतों से दोनबास के लोगों को होने वाली कठिनाइयों पर एक रिपोर्ट जारी कर दी है। उनका कहना है कि मुझे नफरत भरे संदेश मिलने लगे हैं। अलग अलग लोगों ने मेरा पीछा किया और मुझे धमकियां दी। उन्होंने मेरा टेलीफोन नंबर, मेरे काम करने और रहने की जगह का पता सार्वजनिक कर दिया है। इस समय जूलियन असान जैसे पत्रकार का भविष्य जेल में गुजरता दिखाई दे रहा है, तो वो अकेले पत्रकार नहीं है जिन्हें तथ्य और हकीकत सामने लाने की वजह से जेल जाना पड़ा है, बल्कि एलिना भी एक पत्रकार हैं जो इसी जुर्म में सोशल मीडिया और मीडिया से वंचित कर दी गई हैं।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शौर्य गाथा।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। इस कार्यक्रम में हम 1980 के दशक में सद्दाम शासन की ओर से ईरान पर थोपे गए युद्ध के दौरान ईरानी जियालों की सराहनीय प्रतिरक्षा का जायजा लेते हैं।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि 8 साल तक चले युद्ध के दौरान ईरान की जनता ने स्वयं सेवा की भावना के साथ किस तरह अपने देश की रक्षा की और स्वयं सेवी युवाओं ने किस तरह शहादत के जज्बे और आध्यात्म की भावना के साथ ये जंग लड़ी। ईरानी युवाओं के शहादत प्रेमी जज्बे और त्याग की भावना के चलते ईरान ने अपने बहुत व्यापक और प्रभावी ऑपरेशनों से इराकी सेना को बार बार हैरत में डाल दिया।
आबादान की नाकाबंदी का तोड़ा जाना, खुर्रम शहर की आज़ादी, शलमचे की जंग, उफनती हुई अरवंद नदी को पार कर लेना, फाओ प्रायद्वीप पर विजय, मिर्साद ऑपरेशन ईरानी जियालों के बहुत बड़े और हैरत अंगेज ऑपरेशन थे। जंग लंबी चली तो इस दौरान इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी ने इस्लाम की दृष्टि में रक्षा की जो परिकल्पना और जो उसूल हैं उन्हें विस्तार से बयान किया और आम जनता को शहादत और जिहाद का अधिक गहराई से ज्ञान हासिल हुआ। इसके अलावा ईरान दुश्मन के हमले को नाकाम बनाने और उसे अपनी धरती से मार भगाने में पूरी तरह कामयाब हो गया। इसके लिए ईरान की फोर्सेस ने लगभग 100 छोटे बड़े ऑपरेशन करके बहुत व्यापक युद्ध कौशल हासिल कर लिया। इस जंग में लगभग 6.5 साल तक ईरानी फोर्सेस को बढ़त हासिल रही और उनका पलड़ा भारी रहा। केवल जंग की शुरुआत के लगभग 1.5 साल के दौरान इराक के बासी शासन की सेना मजबूत स्थिति में रही।
इराक द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध के बारे में इमाम खुमैनी ने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि इस लंबी असमान जंग में हमने केवल ईमान, अल्लाह पर भरोसे, इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की दुआओं, आत्मविश्वास, साहसी पुरुषों की हिम्मत और बहादुर महिलाओं के त्याग की मदद से विजय हासिल की। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें किसी भी बड़ी ताकत का एहसान नहीं लेना पड़ा। हमारे अनुभवी और मोमिन अवाम ने अल्लाह की मदद से अकेले और मजलूमियत की स्थिति में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। सैनिक ऑपरेशनों की मंसूबा बंदी से लेकर प्रशिक्षण और हथियारों की जरूरत तक पूरी करने तक हर समस्या का हल जनता ने खुद तलाश किया। आम जनता ने देश की रक्षा के मैदान में करिश्माती कामयाबियां हासिल करने और हमलावर दुश्मन को अपने बड़े भूभाग से बाहर खदेड़ने के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में हैरत अंगेज काम करने जैसी फैक्ट्रियां लगाने और आधुनिक रक्षा उपकरण बनाने में सफलता हासिल की। ये सब करने के लिए ईरानी जनता ने किसी भी विदेशी सलाहकार की मदद नहीं ली और किसी भी बाहरी देश ने किसी तरह का सहयोग नहीं किया। ईरान ने जब ये सब कुछ अपनी क्षमताओं से, अपनी मेहनत से हासिल किया है।
जंग ने ईरान की जनता और सरकार के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी। ईरान को बेहद कठिन हालात से गुजरना पड़ा। बहुत ज्यादा दबाव, अनगिनत समस्याएं, कुछ देशों की ओर से सैन्य उपकरणों पर लगाई गई पाबंदियां वजह बनी कि इस्लामी क्रांति संरक्षक फोर्स IRGC का गठन हो। यह फोर्स पूरी तरह देश की जनता की क्षमताओं और संभावनाओं पर निर्भर थी। इस फोर्स ने बड़ी संख्या में स्वयंसेवियों को संगठित किया और मजबूती से आगे बढ़ते हुए मोर्चों पर दुश्मनों को बार बार शिकस्त दी। इस बीच ईरान की सेना अमेरिका पर अपनी निर्भरता से काफी हद तक बाहर निकल आई और अपनी आंतरिक क्षमताओं और संभावनाओं के सहारे युद्ध लड़ने लगी। जंग की वजह से फोर्सेस को इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपना कौशल दिखाना पड़ा। इस जरूरत का एहसास हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धियां और अनुभव मौजूद हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करके देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए।
दोस्तों, जंग की वजह से रक्षा व सामरिक उद्योग के क्षेत्र में बड़ी मेहनत और तेज गति से काम हुआ। खास तौर पर मिसाइल उद्योग में ईरान ने हैरत अंगेज ढंग से उन्नति की। ईरान की औद्योगिक क्षमताओं और सफलताओं से जंग के मोर्चे पर ईरानी फोर्सेस की स्थिति और भी मजबूत हुई। जंग के कुछ साल तो ऐसे थे जिनमें कुछ क्षेत्रों में ईरान की क्षमताओं का केवल 50% ही सक्रिय था।
जंग के दौरान पाबंदियां थी और ईरान अपनी जरूरत की कुछ चीजें विदेशों से लाने पर मजबूर था और इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे, मगर धीरे धीरे ईरान ने कई तरह के सैन्य उपकरणों का निर्माण शुरू कर दिया। तोपखाने की जरूरत की चीजें ईरान के रक्षा उद्योग के विभाग में बनने लगी। जंग जब शुरू हुई तो उस समय ईरान किसी तरह का भी मिसाइल बनाने में सक्षम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरा तो ईरान ने स्कर्ड बी, ताव और शहाब मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया। इनकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक पहुंच गई। ईरान ने जमीन से समुद्र के भीतर मार करने वाले मिसाइल बना दिए। इसके अलावा ईरान कई प्रकार के हेलीकॉप्टरों जैसे कोबरा हेलीकॉप्टर और परिवहन हेलीकॉप्टरों की बॉडी भी बनाने लगा और विमानों तथा हेलीकॉप्टरों में प्रयोग होने वाले हजारों कलपुर्जे ईरान के भीतर तैयार किए जाने लगे। आज ईरान ऐसा देश बन चुका है जो अपनी रक्षा जरूरत के अधिकतर उपकरण और हथियार खुद ही बनाता है। यही नहीं, अब तो यह देश बहुत से रक्षा उपकरणों का निर्यात करने की स्थिति में पहुंच चुका है।
अगर जंग के दौर में हासिल होने वाली उपलब्धियों की बात की जाए तो इनमें वो कीमती अनुभव हैं जिसकी मदद से ईरान ने जंग का सामना किया और अनेक प्रकार के बेहद कठिन और प्रभावशाली ऑपरेशन किए। जंग को कैसे डील किया जाए, कमांड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट किस तरह काम करे, किस तरह स्ट्रेटेजी बनाई जाए, इन सारे पहलुओं पर ईरानी जियालों ने बड़ी मेहनत से काम किया और कीमती अनुभव हासिल किए। पवित्र प्रतिरक्षा में एक बेहद खास बात थी जिसे कुछ युवाओं ने समझा और गहराई तक अपने अस्तित्व में उतार लिया, जिसका नतीजा यह निकला कि गैर प्रशिक्षित युवा और बहुत सीमित अनुभव रखने वाले योद्धा भी जटिल सैनिक ऑपरेशन के योजनाकार बन गए। उन्होंने खुद को और अपने साथियों को आगे किया और देश की धरती को विदेशी कब्जे से आजाद कराया। उनमें से कुछ ने इसी संघर्ष में अपनी जान भी गंवाई और शहादत के दर्जे तक पहुंचे। उनमें कुछ को यह मौका मिला कि अपने अनुभवों दूसरों तक हस्तांतरित करें। 8 वर्षीय पवित्र प्रतिरक्षा की एक बड़ी खास बात यह थी वो इमाम खुमैनी का नेतृत्व था, जिन्होंने ईरान में इस्लामी क्रांति और इस्लामी शासन व्यवस्था की बुनियाद डाली।
ईरान के पास ये बहुत बड़ी ताकत थी कि उसका नेतृत्व उस हस्ती के हाथ में था जो अध्यात्म, खास आकर्षण, दूरदर्शिता, अपार क्षमता और गहरी सूझबूझ से सुसज्जित थी और ईरान के लोग उनसे दिल की गहराइयों से प्यार करते थे। वह पूरी ईरानी जनता के लिए एक मजबूत सहारा और भरोसेमंद अभिभावक थे। इमाम खुमैनी ने खतरनाक जंग को अवसर में बदल दिया जिसके कारण ईरानी जनता की क्षमताएं निखरी और परवान चढ़ी। ईरान की जनता ने इस अवसर का उपयोग करते हुए अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। इमाम खुमैनी ने अपने गहरे प्रभाव की मदद से लोगों में दुश्मन से लड़ने का जज्बा मजबूत किया और फोर्सेज में रक्षा के साथ साथ हमले का साहस पैदा किया। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से दुश्मन को विजय तक पहुंचने से रोक दिया। इमाम खुमैनी ने जंग के राजनीतिक पहलुओं को बड़ी महारत से संभाला और सद्दाम को दीवार से लगा दिया। इमाम खुमैनी ने बहुत कम समय में हमलावर सद्दाम के खिलाफ पूरे देश को संगठित और पंक्तिबद्ध कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ईरान ने प्रतिरोध की कई नई मिसाल कायम कर दी।
इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरानी जनता ने दुश्मन के उस समय तक जंग की जब तक वो पूरी तरह ईरान की धरती से बाहर नहीं निकल गया और ईरान की धरती का एक बड़ा भाग आज़ाद नहीं हो गया। ईरान ने दुश्मन के हमलों के जवाब में ऐसा प्रतिरोध दिखाया कि सद्दाम को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सद्दाम को ईरान की सारी तार्किक मांगे माननी पड़ी। ईरान की जनता ने पवित्र प्रतिरक्षा के दौर में अपने शानदार मनोबल और अद्वितीय प्रतिरोध तथा सहनशीलता का प्रदर्शन किया। लोगों के भीतर कुर्बानी पेश करने और दुश्मन के सामने डट जाने का जज्बा मजबूत हुआ। हर व्यक्ति इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था और इमाम खुमैनी की नीतियों के समर्थन में खड़ा था। इस्लाम, ईरान, इस्लामी व्यवस्था और इस्लामी क्रांति की रक्षा जैसे लक्ष्यों ने आम जन के भीतर बड़ा मजबूत जज्बा पैदा कर दिया था। इस नतीजे में बाहरी दुश्मन के हमले के मुकाबले में पूरा ईरानी राष्ट्र एकजुट हो गया।
श्रोतागण, कार्यक्रम शौर्य गाथा यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाजत दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और दोस्तों प्रस्तुत है अब सभा का अंतिम कार्यक्रम आजकल।
आजकल
दोस्तों, आजकल कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ज़ायनी शासन की संसद भंग कर दी गई है, अब वहां पर नवंबर में नए चुनाव कराए जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। स्वाति और सैयद मेहसाम का सलाम स्वीकार कीजिए।
ज़ायनी शासन की 24वीं संसद आधिकारिक रूप से भंग हो चुकी है। नफ्ताली बेनेत की सरकार के गिरने के कई कारण हैं, जिनमें से दो को अधिक प्रमुख बताया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि बेनेत नफ्ताली की सरकार आरंभ से ही बहुत कमजोर थी। इसमें ना तो कोई मजबूती थी और इसके भीतर कई प्रकार के विरोधाभास भी मौजूद थे। एक साल पहले इसराइल में लंबे राजनीतिक गतिरोध के बाद जब बेनेत ने गठबंधन सरकार की बागडोर संभाली थी तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि उनकी सरकार एक साल से ज्यादा चल पाएगी। यही वजह है कि इसके गठन के आरंभिक समय से ही ये कहा जा रहा था कि ज़ायनी शासन की ये सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। उसके भीतर कई प्रकार के मतभेद भी पाए जाते थे। ये मतभेद इतने अधिक थे कि सत्ताधारी दल यामीना के कुछ सदस्यों ने तो बेनेत के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था।
इसराइल की संसद नेसेट को भंग करने और नए चुनाव कराए जाने का फैसला उस समय लिया गया जब इसराइल के संचार माध्यमों ने यामीना पार्टी के अति दक्षिणपंथी सदस्य नीर उर्बाख ने एक बयान जारी करके ऐलान किया था कि मैंने प्रधानमंत्री को सूचित कर दिया है कि वर्तमान स्थिति के कारण मैं उनके गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं। उनके मंत्रिमंडल से निकल जाने के परिणाम स्वरूप नफ्ताली बेनेट की सरकार अल्पमत में आ गई। इस घटनाक्रम से पहले वहां की एक महिला अरब सांसद गीदा रिनावी जाबी ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद बेनेत सरकार के पास 120 सांसदों के हाउस में 59 सांसद ही रह गए हैं।
कहा जाता है कि अरब सांसद ने विचारधारा के मतभेदों के चलते त्याग पत्र दिया। जाबी ने कहा था कि बैतुल मुकद्दस में लगातार बढ़ती हिंसा और इसराइली पुलिस की ओर से फिलिस्तीनी पत्रकार शीरीन अबू आकले के अंतिम संस्कार समारोह में की जाने वाली निर्ममता को देखकर उन्होंने त्याग पत्र का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब सरकार का समर्थन जारी रख पाना असंभव है, क्योंकि ये उसी समाज पर शर्मनाक दबाव डाल रही है जिससे मेरा संबंध है। अब उसके पास बहुमत से 2 सीटें कम हो गईं। नफ्ताली बेनेत की सरकार में वामपंथी, दक्षिणपंथी और संतुलित विचारधारा के लोग शामिल बताए जाते हैं।
नफ्ताली बेनेत की सरकार गिरने की दूसरी वजह जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट में भेदभावपूर्ण कानून का लागू किए जाने का फैसला है। ये भेदभावपूर्ण कानून जुलाई के महीने में समाप्त हो जाना है। विपक्षी दलों ने कहा है कि वे इस कानून को एक स्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि वे नफ्ताली की सरकार को इस मतभेद से भरे कानून को लागू कराने के योग्य नहीं समझती। इसी प्रकार नफ्ताली बेनेत के मंत्रिमंडल का समर्थन करने वालों को भी इस कानून को लागू कराने में विफलता का मुंह देखना पड़ा। इसका कारण यह है कि इस गठबंधन के अरब मूल के दो सदस्यों ने उसके पक्ष में मतदान करने से मना कर दिया।
पश्चिमी एशिया मामलों के एक जानकार हुसैन आजुलू इस बारे में कहते हैं कि जब बेन्यामिन नेतन्याहू के हाथों से सत्ता सरक गई थी तो उस समय ये मुद्दा बहुत बढ़ गया था कि इस मंत्रिमंडल के गठन में शामिल 8 दलों का गुट आपस में एक नहीं है। इस गुट में जो दल शामिल थे उनमें आपस में बहुत बड़े पैमाने पर वैचारिक विरोधाभासा पाई जाती थी। समय बीतने के साथ ही साथ इन दलों के बीच मतभेद बढ़ते गए जो बाद में ज़ायोनी मंत्रिमंडल के टूटने का कारण बने। एक कारण ये भी है कि नेतन्याहू ने बेनेट और लैपिड सरकार के गठन के पहले दिन से ही इसके पतन की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने सरकार गिराने के प्रयास तेज कर दिए थे।
नेतन्याहू ने एक सीट की बढ़त वाली सरकार पर अंततः तगड़ी चोट लगाई और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। नेतन्याहू ने विभिन्न चालों से बेनेट के दो सहयोगों को तोड़ लिया, जिसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। आजुरालू कहते हैं कि दूसरा मुख्य कारण यह है कि इस गठबंधन के सत्ताकाल में सुरक्षा चुनौतियों में तेजी से वृद्धि हुई है। फिलिस्तीनियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में ज़ायनियों के बढ़ते तनाव और उसके बाद घटने वाली घटनाओं ने फिलिस्तीनियों को सख्त मुकाबले के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार की बातों ने आपस में मतभेदों को बढ़ाने में हवा दी है।
ज़ायनी शासन की 24वीं संसद आधिकारिक रूप से भंग हो चुकी है। पिछले 3.5 वर्षों के दौरान ज़ायनी शासन में 5वें संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। इसराइल की संसद के भंग किए जाने के कारणों में यदि गौर किया जाए तो पता चलेगा कि हालिया वर्षों के दौरान ये शासन पश्चिमी एशिया में बहुत ही अस्थिर शासन रहा है। सामान्यतः संसद की एक चरण की आयु 4 वर्ष होती है। हालांकि इसराइल में 4 साल पूरा होने से पहले ही 3.5 वर्षों के दौरान संसद के 5 चुनाव होंगे। इस हिसाब से वहां की संसद के एक चरण की आयु 1 वर्ष तक नहीं हो पाई। एक अन्य बात यह है कि नवंबर 2018 से लेकर अब तक वहां पर केवल 1 साल तक काम स्थायी मंत्रिमंडल में नहीं हुआ। नवंबर सन 2018 को अवैध ज़ायोनी शासन के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मंत्रिमंडल धराशायी हो गया था। बाद में उसने अस्थायी रूप से अपनी गतिविधियां जारी रखीं।
पिछले जून से वहां पर नेफ्ताली बेनेट की सरकार चल रही थी, जो एक स्थायी मंत्रिमंडल की स्वामी नहीं थी। समय या अवधि के हिसाब से यह इसराइल की सबसे कम अवधि वाली सरकार थी। अब तक यह पाया है कि ज़ायोनी शासन में आगामी संसदीय चुनाव के आयोजन तक वहां के विदेश मंत्री को इस शासन का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से याइर लैपिड लगभग 4 महीनों तक एक प्रधानमंत्री के रूप में गतिविधियां अंजाम दे सके। ऐसा भी हो सकता है कि यह अवधि कुछ बढ़ जाए, क्योंकि अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी में नया गठबंधन बनने में कुछ समय तो लगेगा ही। अगर ज़ायोनी शासन का कोई भी दल या गठबंधन वहां की संसद में 61 सीटें नहीं ला पाए तो फिर एक नए प्रधानमंत्री के चयन और उसका मंत्रिमंडल बनने में निश्चित रूप में अधिक समय लग सकता है।
वहां के हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये शासन 2019 से 2021 तक सरकारों के गिरने और मंत्रिमंडलों के गठन में विलंब का साक्षी रहा है, उसी प्रकार से भविष्य में भी वहां पर वैसा ही हो सकता है। अगर मध्यपूर्व में अस्थिर सरकारों की बात निकलती है तो हालिया वर्षों के दौरान लेबनान और इराक में भी ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि जिस प्रकार की अस्थिरता इसराइल में पाई जाती है वैसी दूसरे स्थानों पर नहीं है। लेबनान और इराक में संसद की निर्धारित समय सीमा के भीतर मध्यावधि चुनाव कराए गए हैं, लेकिन वहां पर अस्थिरता का कालखंड कोई बहुत अधिक नहीं रहा। यहां पर विशेष बात यह है कि लेबनान और इराक में जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई उसका मुख्य कारण वहां के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप था। इस विदेशी हस्तक्षेप में सबसे अहम भूमिका अमेरिका की रही है।
हालांकि इसराइल के मामलों में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं दिखाई देता, वहां पर पाई जाने वाली अस्थिरता स्वयं अवैध ज़ायोनी शासन के ढांचे के भीतर निहित है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुछ अरब देशों में अस्थिरता से अमेरिका और ज़ायोनी शासन को लाभ मिलता है, इसीलिए वे वहां के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। किंतु अमेरिका तो आरंभ से ही इसराइल में राजनीतिक स्थिरता के लिए प्रयास करता रहा है। विशेष बात यह है कि इससे पहले तक ज़ायोनी शासन के राजनीतिक दल और कुछ अन्य देश ज़ायोनी शासन की राजनीतिक अस्थिरता का दोष वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर डालते थे, किंतु नेफ्ताली बेंत के मंत्रिमंडल के टूटने से यह बात स्पष्ट हो गई कि वहां का कोई भी राजनीतिक दल अपने भरोसे मंत्रिमंडल बनाकर उसका संचालन करने में सक्षम नहीं है। वहां के दल आपस में गठबंधन के लिए भी अब तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए यह बात समझ में आती है कि ज़ायोनी शासन की समस्याओं की मूल जड़ इस शासन के ढांचे में निहित है। इन बातों की दृष्टिगत यह बात कही जा सकती है कि इसराइल में नए चुनाव होने और मंत्रिमंडल के गठन के बाद भी वहां का राजनीतिक संकट समाप्त होने वाला नहीं है।
इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर अब संपन्न होती है। खुदा हाफिज़। Thank you.